समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। जी हाँ, हर किसी को एक दिन मरना ही है, तो क्यों ना ऐसे जिया जाए कि जाने से पहले वो सारे काम पूरे कर लिए जाएं जो हमने कभी सोचे थे। कभी आपने सोचा है कि वो काम क्या होंगे? क्या वो सिर्फ आपकी खुशियों के बारे में होंगे, या फिर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपके आसपास के समाज और लोगों में कुछ परिवर्तन आए, कुछ ऐसा करके जाएं कि आपके जाने के बाद भी ये दुनिया, समाज, लोग आपके काम से आपको याद करें। और शगुन आज ग्रैंड पेरेंट्स डे भी है। हमारा पूरा बचपन दादा दादी और नाना नानी की कहानियों के बीच गुजरता है ना? राइट। हमारी सबसे प्यारी यादें वो बचपन के दिन होते हैं जब हम अपने बाबा या दादी से ढेर सारी कहानियां सुनते हैं और उनके साथ सैर सपाटे पर जाते हैं, अपनी हर जिद उनसे पूरी करवा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बड़े होने के साथ साथ वे भी बूढ़े होते जाते हैं? शायद अब उन्हें हमारी जरूरत ज्यादा होती है। ऐसे समय में हमें उनका सहारा बनना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग भी एक समय में बच्चे ही बन जाते हैं। बच्चों की तरह ही उन्हें देखभाल की जरूरत होती है, तो क्यों ना हम भी अपना उत्तरदायित्व निभाएं, क्योंकि आज तक हमने जो कुछ भी सीखा है, जैसा भी सीखा है, सब उनके संस्कारों का ही परिणाम है। बचपन में दिए गए उनके संस्कार ही हमें मनुष्य से मनुष्यता की ओर ले जाते हैं। हमारे बचपन के दिनों में हमारे मिट्टी जैसे हृदय को एक सांचे में वे ही ढालते हैं।
मुझ वाले दादा हो, हो, हो गोल मोल दादी ही है। गए 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 गुलामी गए, हम तो हुए हैं, हम तो हुए हैं, हम तो हुए आजा। मुझ वाले दादा हो, हो, हो गोल मोल दादी ही है।
Well, our grandparents play a huge role in our lives. They are at the top of our family trees. They provide us with guidance and wisdom. And a lot of us have fond memories of bedtime stories and family occasions with our grandparents. Grandparents' Day provides us with the perfect opportunity to honor our grandparents. It's a day to celebrate the warmth, wisdom and love that grandparents bring into our lives by spending cherished moments together. It is important to let your grandparents know how loved and appreciated they are. So go ahead, listeners, make your grandparents feel special on this date. And on that very note, once again, welcome along listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani Network to our daily news magazine program, Aaj Savere. This is Shagun Chopra with Akarshita. Here, we'll be providing you with the latest news, Metro City updates and explore the history of this day, that is 8th of September 2024. Let's get started with the headlines first.
गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया है कि वे जम्मू कश्मीर में पुरानी व्यवस्था को वापस लाना और पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कल जम्मू में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक शांति कायम नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत नहीं होगी। इससे पहले जम्मू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के आश्वासन दिया था।
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will travel to Riyadh, Saudi Arabia today to attend the first India-Gulf Cooperation Council GCC Foreign Ministers meeting. During the two-day visit, he is also expected to hold bilateral meetings with foreign ministers from GCC member countries. On the second leg of the visit, Dr. Jaishankar will travel to Berlin, Germany for a two-day visit from Tuesday. This will be his third bilateral visit to Berlin. Both India and Germany share a robust strategic partnership, and Germany is one of India's prominent trading partners and among the largest foreign direct investors. During the visit, the External Affairs Minister will meet German Federal Foreign Minister as well as the leadership and other ministers from the German government with an objective to review the entire gamut of bilateral relations between India and Germany. Dr. Jaishankar will thereafter travel to Geneva, Switzerland for an official visit from 12th of this month. During the visit, the External Affairs Minister will meet with heads and representatives of international organizations with whom India is actively engaged. He will also meet Swiss Foreign Minister to review the close partnership between the two countries and explore avenues to enhance the bilateral relationship further.
संयुक्त अरब अमीरात के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान आज भारत पहुंच रहे हैं। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात का कार्यक्रम है। इस यात्रा का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात और भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करना है। श्री खालिद के साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योगपतियों और आर्थिक भागीदारों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है। श्री खालिद आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठकें करेंगे। वे कई ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें विविध क्षेत्रों में अमीरात और भारत के मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाया जाएगा। आर्थिक विकास, निवेश, व्यापार और जलवायु परिवर्तन नियंत्रण के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच मौजूदा भागीदारी रचनात्मक सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय मॉडल बन गई है। दोनों देशों ने वैश्विक स्थिरता और शांति को बढ़ावा देने के मामले में भी प्रतिबद्धता दर्शाई है।
The SBI Foundation has launched the third edition of its Asha Scholarship Program, supporting 10,000 meritorious students from underprivileged backgrounds. Scholarships ranging from 15,000 to 2 lakh rupees are available for students from class 6 to postgraduate level. The program includes categories for those in IITs, IIMs, and a special study abroad category for SC and ST students.
मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 7 दिन तक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में भी भारी वर्षा का अनुमान है। केरल, माही, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों और तटीय कर्नाटक में भी अगले 4 से 5 दिनों तक कई स्थानों पर तेज वर्षा होगी। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा पश्चिम और मध्य भारत में इस सप्ताह हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।
The last date for submitting nominations for the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2025 is the 15th of this month. The awards are organized by the Ministry of Women and Child Development in January every year and will be announced on the 26th of December this year on Veer Bal Divas. The awards aim to celebrate the energy, determination, ability, zeal and enthusiasm of the children. The nominations can be filed for children above 5 years and under 18 years of age on the official website of Rashtriya Puraskar. Now focusing on sports updates, at the Paralympic Games in Paris, India extended their dominance by securing 2 more medals before the conclusion of day 10. Navdeep Singh claimed gold in the men's javelin throw F41 event after the Iranian athlete who had initially finished first was disqualified for unsporting or improper conduct. Meanwhile, sprinter Simran Sharma won a bronze medal in the women's 200-meter T12 track event. India have climbed to the 16th spot in the medal tally with a total of 29 medals, including 7 gold, 9 silver and 13 bronze.
आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरों के साथ हैं शगुन।
Now let's focus. First of all, let's focus on Chennai. The Wildlife Crime Control Bureau has alerted the notorious Ninja Turtle gang based in Malaysia is causing a surge in illegal smuggling of livestock tortoises from Chennai to Southeast Asian destinations. According to an alert, there is a potential increase in trafficking due to rising demand in countries such as Thailand, Indonesia and Malaysia. Last month, 4 cases of illegal export and 1 seizure within India were reported. M. Kirupasankar, Deputy Director of the Bureau, said that alerts have been circulated to state wildlife authorities, police, customs, airport officials and railway personnel, highlighting the smuggling network modus operandi, which involves local collection, transportation, packaging and international trafficking of tortoises. Now let's turn our attention to Bengaluru. The Bruhat Bengaluru Mahanagar Palike has made elaborate arrangements for the immersion of Ganesh idol in Bengaluru. It has set up 462 mobile tankers across the city for the citizens to bring the idols from their homes and immerse them at these facilities. The municipal corporation has stopped people from immersing the idols directly in lakes to avoid environmental degradation. Hence, mobile tankers stationed at different localities are accepting the Ganesh idols for immersion. The highest number of mobile tankers were set up today in the east zones with 138 mobile tankers, followed by the west zone with 84 tankers. It has also set up water tanks near the lakes, which can be used by people to immerse their idols. Close to 41 lakes in the city have this facility. The Mahanagarpalika has also set up 63 single-window centres where the organisers of Ganesh Pandals can apply for permission to set up the pandal. The corporation has appointed the nodal officers along with the team of police and Bescom Power Company to inspect the pandals for all compliance. Now talking about Hyderabad Metro, Telangana State Government has announced 1 crore rupees cash reward, Group 2 job and 500 square yards of land in Warangal for Deepthi Jeevanji. She won a bronze medal in the women's 400 meters T20 category in the Paris Paralympics earlier this month. An official release stated that the specially abled athlete with intellectual impairment has inspired millions. Chief Minister A. Revanth Reddy announced this yesterday when she called on him in Hyderabad. The state government also announced 10 lakh rupees to her coach N. Ramesh, a Dronacharya awardee. T20 category is meant for athletes with intellectual challenges. Now after these updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad, Akashita will be sharing the updates from Delhi, Mumbai and Kolkata.
जी तो आइए जानते हैं दिल्ली से खबरें. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली वासियों को गणेश चतुर्थी के पर्व पर शुभकामनाएं दी. एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि विघ्नहर्ता विनायक का शुभ आगमन लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए और मंगल मूर्ति सबका कल्याण करे. वहीं दिल्ली सरकार अपने सभी स्कूलों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए काउंसलिंग कराएगी. दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों को इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए हैं. दिल्ली के शिक्षा विभाग के अनुसार पिछले एक वर्ष में 20 स्कूलों के 20,000 से अधिक बच्चों की काउंसलिंग की गई है. इस विषय पर शिक्षा मंत्री आतिशी ने विद्यालयों में तैनात मनोवैज्ञानिक काउंसलर्स से चर्चा की. उन्होंने कहा कि तन के साथ साथ मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है. बच्चों का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब वे मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हों. शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य छात्रों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है. दिल्ली के रफी मार्ग स्थित ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में आज से 5 दिवसीय राष्ट्रीय समूह कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है. इस प्रदर्शनी में लगभग 40 प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा 100 से अधिक उत्कृष्ट कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा. आगंतुक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक इस प्रदर्शनी को देखने जा सकते हैं. प्रदर्शनी का समापन इस महीने की 12 तारीख को होगा. वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए तीसरी कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट के आधार पर आज तक दाखिले लिए जा सकते हैं और फीस का भुगतान इस महीने की 10 तारीख तक किया जा सकेगा. छात्र प्रवेश प्रक्रिया और कट ऑफ लिस्ट से जुड़ी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं. दिल्ली से सटे फरीदाबाद के रिटर्निंग अधिकारी और अतिरिक्त उपायुक्त डॉ आनंद शर्मा ने अगले महीने की 5 तारीख को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में फ्लाइंग दस्ता और स्टैटिक निगरानी टीमों द्वारा लगे नाकों का औचक निरीक्षण किया. इस निरीक्षण का उद्देश्य क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करना था। और अब मुंबई से खबरें। पालघर जिले में वसई विरार सिटी नगर निगम द्वारा कल वायु गुणवत्ता में सुधार और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आसमान में स्वच्छ वायु के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विरार के महाडा मैदान में पौधारोपण किया गया। आयुक्त ने स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, महिला स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों को भी पौधे वितरित किए। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में पींच टाइगर रिजर्व ने लुप्त प्राय गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत ग्रामीण गिद्धों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए जानवरों के शवों को निर्दिष्ट स्थानों पर फेंकेंगे। इस कार्यक्रम का नाम जटायु ग्राम मित्र है। पींच टाइगर रिजर्व मुंबई स्थित बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियों के संरक्षण और पुनरुद्वार की दिशा में काम कर रहा है। वहीं मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन के एक ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक रामावतार मीना ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए एक महिला यात्री की जान बचाई। मध्य रेलवे ने उनके साहस की सराहना की और यात्रियों से आग्रह किया है कि वे चलती ट्रेनों में चढ़ने या उतरने से बचें। एसबीआई फाउंडेशन ने अपने आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का तीसरा संस्करण शुरू किया है, जिसके तहत वंचित पृष्ठभूमि के 10,000 मेधावी छात्रों को सहायता प्रदान की जाएगी। कक्षा 6 से स्नातोत्तर स्तर तक के छात्रों के लिए 15,000 से 2,00,000 रूपये तक की छात्रवृत्ति उपलब्ध है। कार्यक्रम में निम्न श्रेणियां शामिल हैं: आईआईटी, आईआईएम, एससी, एसटी छात्रों के लिए एक विशेष विदेश में अध्ययन श्रेणी शामिल है। और आइए अब जानते हैं कोलकाता की खबरें। पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के गिरफ्तार पूर्व प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वे 72 घंटों के भीतर संतोषजनक जवाब दें, अन्यथा उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। उन्हें मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। और आइए अब जानते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। और शगुन, आजकल का मौसम कितना हसीन हो गया है ना, बहुत अच्छा लगता है।
एब्सोल्युटली,
बिकॉज वी वर वेटिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम कि कब बारिश होगी। और आप देखो मौसम कितना सुहाना रहता है, बादल छाए रहते हैं, जब कब देखो तो बारिश हो जाती है।
स्पेल्स ऑफ रेन एंड ड्रिजल एंड थंडर शावर्स टेकिंग ओवर।
और अपने श्रोताओं को बता दें कि अधिकतम तापमान आज का दिल्ली में 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तेज बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और कोलकाता में बिजली चमकने, आसमान में बादल छाए रहने के साथ बारिश की छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
ऑल्सो टॉकिंग अबाउट चेन्नई, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 26 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज। Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain. The temperature will hover between a minimum of 21 degrees and a maximum of 30 degrees Celsius.
और आइए अब जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या-क्या हुआ। उससे पहले हम आप सभी को बता दें कि आज पूरी दुनिया में साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य वैश्विक अशिक्षा का मुकाबला करना और समाज में बदलाव के लिए शिक्षा को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है।
वेल, वर्ड्स हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स एंड इंटरनेशनल लिटरेसी डे एम्स टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी। And also, the focus is on enhancing literacy rates to bridge educational gaps and also promote gender equality.
और आज के दिन ही 1900 में टेक्सास के गैल्वेस्टून में चक्रवाती और ज्वारीय तूफान से 6000 लोगों की मौत हो गई थी और 1952 में आज के दिन ही जिनेवा में कॉपीराइट के लिए पहले विश्व सम्मेलन में भारत समेत 35 देशों ने हस्ताक्षर किए.
Now from that year, taking you way back in time, in the year 1504, the renowned Italian artist Michelangelo unveiled his masterpiece, the Statue of David, in the city of Florence. In the year 1858, Abraham Lincoln delivered a speech in which he famously quoted, "You may fool all the people some of the time, you can even fool some of the people all the time, but you can't fool all of the people all the time, right?
Yeah, that's true. और आज के दिन ही 1991 में मैसिडोनिया गणराज्य स्वतंत्र हुआ था.
Again, taking you way back in time, in the year 1897, Lokmanya Tilak was charged in anti-national activity case. In the year 1941, the protracted siege of Leningrad during World War II began on this day, in the year 1941, with German, Finnish and eventually Spanish troops laying siege to the city.
और आज के दिन ही 2008 में प्रसिद्ध अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स ने भारतीय अरबपति लक्ष्मी मित्तल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की.
In 1966, Queen Elizabeth II officially opened the Severn Bridge connecting England and Wales. In 2022, Queen Elizabeth II passed away at Balmoral Castle after ruling for 70 years, becoming the UK's longest serving monarch.
और अब समय है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस. आज भारत के विलक्षण कलाकार भूपेन हजारिका की जयंती है. वे अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते थे. भूपेन हजारिका को दक्षिण एशिया के श्रेष्ठतम सांस्कृतिक दूतों में से एक माना जाता है. उन्होंने कविता, लेखन, पत्रकारिता, गायन, फिल्म निर्माण अनेक क्षेत्रों में काम किया है. भूपेन हजारिका पहले व्यक्ति थे जिन्होंने असमिया संस्कृति को विश्व मंच तक पहुंचाया था. बचपन में ही उन्होंने अपना पहला गीत लिखा और 10 वर्ष की आयु में उसे गाया भी. उन्होंने एरा बतरसुर से अपनी फिल्म का पहला निर्देशन किया. फिल्म रुदाली के गीत दिल हूं हूं करे के जरिए हजारिका हिंदी फिल्म जगत में छा गए. इसके अलावा हजारिका ने दमन फिल्म में गुमसुम गाना भी गाया. भूपेन ने मैं और मेरा साया, एक कली दो पत्तियां, हां आवारा हूं, उस दिन की कई बात जैसे कई सारे हिंदी गानों को गाया. आइए सुनते हैं उनका ये गीत.
दिल हुम हुम करे घबराए, घन धम धम करे कर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए. दिल हुम
He received the National Film Award for Best Music Direction in the year 1975, the Sangeet Natak Academy Award, Padma Shri and Padma Bhushan, Dada Saheb Phalke Award, the highest civilian award, the highest award for cinema in India, and Sangeet Natak Academy Fellowship, the highest award of the Sangeet Natak Academy. He was posthumously awarded both the Padma Vibhushan, India's second highest civilian award, and the Bharat Ratna in the year 2090. Also, he held the position of the chairman of the Sangeet Natak Academy from December 1998 to December 2003. And for you listeners, we have another beautiful composition by him.
प्रजा गुणकार करी हाहाकार, निःशब्द सदा ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों, नई दिखता नष्ट हुई.
आज मशहूर पार्श्व गायिका और लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोंसले का जन्मदिन है. उन्होंने 800 से अधिक फिल्मों में 10,000 से ज्यादा गाने गाए हैं. बड़ी बहन लता मंगेशकर की छत्रछाया में आशा जी ने पार्श्व गायन प्रारंभ किया. 1957 में दिलीप कुमार और वैजयंती माला अभिनीत नया दौर फिल्म की मांग के साथ तुम्हारा गीत से आशा ने लोकप्रियता हासिल की। उनकी मुख्य फिल्में रही नया दौर, तीसरी मंजिल, संग दिल आदि, और उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
जान लीजिए बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा, मान लीजिए बस एक बार मेरा कहा, मान लीजिए दिल चीज क्या है
Wow, such a beautiful medley in her undoubtedly melodious voice. Well, Asha Bhosle's work includes film music, pop, ghazals, bhajans, traditional Indian classical music, folk songs and also qawwalis. And now moving on, it's also the death anniversary of age Niels Bohr. He was a Danish nuclear physicist who shared the Nobel Prize in Physics in the year 1975 with Ben Roy Mortensen and James Rainwater for the discovery of the connection between collective motion and particle motion in atomic nuclei and the development of the theory of the structure of the atomic nucleus based on this connection. Starting from Rainwater's concept of an irregular-shaped liquid drop model of the nucleus, Bohr and Mortensen developed a detailed theory that was in close agreement with experiments. Also, today we are remembering Richard Strauss, German composer and conductor best known for his tone poems and operas. Strauss's compositional output began in the year 1870 when he was just 6 years old. He was the most significant German opera composer of the first half of the 20th century, who established his reputation at the end of the 19th century through a series of brilliant orchestral tone poems, such as Death and Transfiguration, also A Hero's Life.
आज हिंदी और पंजाबी फिल्मों के जाने माने पहचाने अभिनेता सतीश कौल की जयंती है। उन्होंने एक एक्टिंग स्कूल भी खोला था। सतीश कौल की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने कर्मा, रामलखन, प्यार तो होना ही था, आंटी नंबर वन जैसी फिल्मों में काम किया। सतीश कौल ने बीआर चोपड़ा की महाभारत में काम करने से लेकर सदी के महानायक तक के साथ काम किया था। उनकी प्रमुख फिल्में हैं कर्मा, आजादी, शेरा दे पुत्र, शेर, मौला जट आदि। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
झुका झुका के नजर यूं उठाई जाती है, झुका झुका के नजर यूं उठाई जाती है, के जैसे शम्मा बुझा कर जलाई जाती है, झुका झुका के नजर यूं उठाई जाती है, झुका झुका।
Today, we are also remembering Willard Frank Libby, American physical chemist noted for his role in the 1949 development of radiocarbon dating, a process which revolutionized archaeology and paleontology, For this development, he was honored with the Nobel Prize for Chemistry in 1960. Libby's book, Radiocarbon Dating, was published by the University of Chicago Press.
और श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और शगुन को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की। लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। नमस्कार।